நாராயண நாராயண யாவரே ராமச்சந்திர கீ ஜய். மார்மூட்டு வம்சிவாதே கீ ஜய்.
ஒரிஷ்டி பிராப்தி நித்ய அவிநாசி ஹை, विद्या सुअभ्य है, इतना होकर के साधन में कठिन होगी तो नहीं, सुसुगम कर तुम करने में भी बहुत ही सुगम है। फिर यह शंका होती है कि यदि ऐसी बात है तो फिर सबको इसमें क्यों नहीं लग जाते, तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि न लगने में केवल श्रद्धा की कमी है। ऐसा धर्म पुरुषा धर्मश्चास परंतर अप्राप मान निवर्तनते मृत्यु संसार वर्तमनी। असाधारणा पुरुषा धर्म से ऐसा परमतव है, ये परमतव ऐसा धर्म से इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि भगवान ने उसको ये भी कहा कि यह धर्म न है, तो ऐसा धर्म से इस धर्म के ऊपर जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वे पुरुष मुझ को नहीं पा करके मृत्यु के संसार सागर के बीच के में बढ़ता रहता है, यानी संसार सागर के में भ्रमण करता रहता है। मुझको न पा करके यह बात जो बतलाई, इससे कि यह ध्वनि निकलती है कि मनुष्य का शरीर जो है सो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो इसके लिए लज्जा की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है। इस प्रकार इसकी प्रशंसा करके भगवान ने इस अध्याय के नाम ज्ञान और विज्ञान के नाम से, ज्ञान और विज्ञान के नाम से, ज्ञान के नाम से भगवान का तत्व और विज्ञान के नाम से भगवान का विशेषत्व है, यानी भगवान का जो साकार रूप है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है और किस प्रकार से थी है, ये सब बात और इसका प्रभाव और साधन और इसका फल, सारी बातें इस अध्याय के में बतलाई है। साथ ही अध्याय के बीच में ज्ञान विज्ञान का उल्लेख करके बहुत सी बातें बतलाई थी, किंतु आठवीं अध्याय के बीच के मां अर्जुन के प्रश्न करने के ऊपर दूसरा प्रकरण चल गया, वो भी भक्ति का ही प्रकरण और दूसरा नहीं, किंतु प्रश्नोत्तर के में वो चल पड़ा, इसलिए उसका उत्तर देकर के फिर उसी विषय को भगवान ने पकड़ लिया जो बात सातवीं अध्याय के में कही थी, और कहीं जो बाकी रह गई थी वो इस नए अध्याय के में भगवान ऐसा कह रहे हैं। कहकर के इसके बीच के में अंत में ये श्लोक कहा कि मन मना हो मद भक्तो और मदिया जी मन नमस्कुरु और माने वैसे महात्मा अनुमत पारायण है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन के मेरे में मन को लगा दे और मेरा ही भक्त हो जा और मेरी पूजा कर और मुझको तो नमस्कार कर, इस प्रकार मेरे में मन लगा करके मेरी शरण हुआ तो मेरे को प्राप्त होगा। ये शरण का प्रकार बतला क्योंकि उसके पूर्व के बीच के में शरण का महत्व भगवान बतला रहे हैं कि मान पार्थ देवास ये पीशु पाप योनि है अस्त्रियो वैश्वासता शूद्रा स्त्री पिरांति प्राणगति। ये पार्थ मेरी शरण लेकर के स्त्री होते वैश्य होते शूद्र हो और चाहे पाप होने वाले अछूत जाति वाले या मिठी जाति वाले भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आत्म से जो भ्रष्ट है उनके लिए उत्तम गति 30 और 31 के श्लोक में, इसी अध्याय के 30 31 के श्लोक में बतला करके और इस 32 के श्लोक में जाति से भी जो नीचे उसकी भी परम गति हो जाती है यह बात बतलाई। फिर दूसरी बात यह बतलाई कि यदि आसन भी अच्छे हैं और जाति भी अच्छी है तो उनका जो मेरी शरण आने पर उद्धार हो जा रहा है, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु ये बात बतलानी बाकी रही कि शरण का स्वरूप क्या है। इसलिए नौवें अध्याय के अंत के मां भगवान ने शरण का स्वरूप अपने सिद्धांत के अनुसार सा बदला दिया। भगवान की जो शरण है वो भगवान की भक्ति है, क्योंकि 33 के श्लोक में भगवान ने साफ या कही कि मां मजस्व तुम मुझको हसो भयो, और इसके बाद में ये श्लोक कहा तो ये भजन का भी प्रकार हो गया और शरण का भी प्रकार हो गया। तो इस वास्ते भगवान की भक्ति यानी भगवान को भजन और भगवान की शरण या एक ही चीज है। जहां कहीं अनंत भक्ति के लक्षण बतलाए या भक्ति का वर्णन किया, वहां शरण शब्द को लाकर उसका एक प्रधान अंग रख दिया, और जहां शरणागति के नाम से व्याख्या की वहां भगवान का की जो भक्ति है भजन है उसको प्रधान रूप में जाकर के रख दिया। जैसे इस अध्याय के अंत के मां मन मना हो मद भगतो मध्यादि मां मनुष्य, इसमें मन मना हो और मद भगतो भय तो तू मेरा भक्त हो जा, खास एक प्रकार से थी भक्ति इस शरणागति के अंदर प्रधानता से आई है। इसी प्रकार से 11वें अध्याय के अंत में जो ये बात बतलाई गई कि भक्ता तुम हमने आज सत्य है ऐमे वन विदोजन है ज्ञातुम दसवें सत्य में प्रवेश तुम से परंत है ये परंत अनंत भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार कि जैसे तुझको दर्शन दिया है इस प्रकार का दर्शन देने के लिए शक हूं यानी बाध्य हूं, और सत्य से जानने में आने के लिए भी बाध्य हूं, और मुझको जान करके मुझ में वह प्रवेश भी कर सकता है। ये कहकर के उस भक्ति का रूप ये बतलाया कि मत कर्म के मत पर हो मत भक्त से वर्जित निर्मल सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव, हे पांडव जो मेरे लिए कर्म करता है और जो मेरी शरण है और मेरा भक्त है और संसार में आसक्ति से रहित है, संसार के मन आसक्ति से रहित है और सारे भूतों के बीच के मन बैर भाव से भी जो रहित है यानी द्वेष भाव से भी जो रहित है, हे पांडव उसको ही प्राप्त होता है। तो यहां ये बात दिखलाई कि भक्त के बीच के मन जब ये कही जाती है कि मेरे में अनंत भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान के बीच के मन अनंत प्रेम और संसार के मां आसक्ति का अभाव। जब संसार के मां भी प्रीति है और भगवान में भी प्रीति है तो वो अनंत भक्ति नहीं कही जा सकती। तो अनंत भक्ति के बतलाते हुए भगवान उसके मां मत परमे ये जो बात कही कि जो मेरी शरण है तो शरण प्रधानता से भक्ति का अंग है, यह मैं भक्ति है एक प्रकार से थी, किंतु ये सर्व कह करके भगवान ने इन दोनों की एकता कर ली। मत कर्म कर्म का मतलब यह है कि तू मेरे लिए कर्म मुका कर्म कर, तेरी सारी क्रिया मेरे लिए होनी चाहिए, और मत भक्त का भाव है कि तू मेरे को ही भजे और मेरे में प्रेम कर, और मत प्रेम का भाव है कि तू मेरी शरण आ जा, यानी जो कुछ मैं तेरे लिए करूं तू मेरे पर निर्भर हो जा और विश्वास रखे कि जो कुछ भगवान करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। तो यही भाव उसने दर्शाया है नवी ध्यान के अंत में कि मन मना हो मन भक्तो और मदिया जी मान मनुष्य करो, मन मना हो मत भक्तो। तो मत भक्त जो शब्द है ये तो दोनों के एक ही शब्द है, उसमें भी यह है ग्यारह अध्याय के अंत में मत कर्म कर मत करना मत भगता पर यहाँ भी मन मना मत भगता तो इस वास्ते मत भग सकते जो कहते ही है और मन मना है इसका खरासा भाव यह है कि तू मेरे में मन को लगा दे तो मेरे में मन को लगा दे तो फिर मत भक्त का भाव ये लेना चाहिए कि तू मेरे में प्रेम कर मेरे में मन को लगा दे तो ये भाव है कि तू मेरे में प्रेम कर और मतिया जी से कि तू मेरी पूजा कर कर्मों के द्वारा तू मेरे को पूज यानी मेरी सेवा कर साक्षात जो भगवान है उस विषय के जितने कर्म उस विषय की जो पूजा जैसे सोलह प्रकार की पूजा पंच प्रकार की पूजा वो भी इसके अंतर्गत और भगवान की सेवा भी इसके अंतर्गत और भगवान के लिए कर्मों का करना भी इसके अंतर्गत है और नमस्कार करने को भाव है कि तू मेरे चरणों के वहां आकर के गिर जा या ना मैं तेरे लिए जो भी कुछ करूं मेरे प्रकाश है उसको तू मेरा विधान मान करके के प्रसन्न हो। जैसे कोई आदमी किसी के चरणों में पड़ जाता है तो वो शरण का एक अंग है चरणों में पड़ने का अभिप्राय यही है कि मारता ही चार मैं अब तुम्हारी शरण आ गया तो भगवान के लिए तो मारता ही चार ये कहना नहीं बनता कि भगवान की शरण होने से तो उसका उद्धार होता है क्योंकि भगवान तो एक प्रकार से किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकते तो मन मना हो मत हो तो मध्याभिमान न शुरू मन मना से भगवान को हर वक्त याद रखना भगवान को कभी भूलना नहीं बुद्धि से किया हुआ जो परमात्मा का जो स्वरूप है बुद्धि से केवल जो अपना निश्चय उसके अनुसार भगवान को हर वक्त याद रखना मत भक्त का भाव है कि भगवान की भगवान जो है उसमें प्रेम करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना और मध्या जी से भगवान की पूजा करना भगवान के अर्थ कर्म करना और मान मनुष्य रूप से भगवान के चरणों गिर जाना और अपने आप को भगवान को सौंप देना भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना तो अभी ये विचार किया जाता है कि चार बात इसके मां बतलाई ये चारों के पालन से थी उसका उद्धार होता है या भगवान की प्राप्ति होती है या इन चारों में से एक के धारण करने से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसका उत्तर यह है कि चारों के धारण करने से प्राप्ति हो जाए इसमें तो कहना क्या है चारों में से एक को भी धारण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है फिर चारों के बतवाने का अभिप्राय क्या अभिप्राय यह है कि चारों बात उसके मन आ जाए तो शीघ्र प्राप्ति हो सकती है और चारों में एक आने पर तो सब एक साथ ही है इस वास्ते एक के आने पर दो दो के आने पर चार सभी बात उसमें आ जाती है। तीसरी बात यह है कि चारों में कोई सी भी एक बात के धारण करने से कल्याण हो सकता है इतनी महत्व की चीज है। यदि कहो कि मन मना हर इसके केवल इसके धारण से कल्याण हो जाता है यह बात कहां लिखी है तो इसका उत्तर यह है कि गीता में जगह जगह यह बात लिखी है अनन चेता सततम योगान समृति नित्य स्वश्यम सुलभ पार्ता नित्य से योगिनो गीता की आठवीं अध्याय के चौदह के श्लोक में भगवान कहते हैं अनन चेता मन अनन चित हुआ पुरुष नित्य निरंतर जो मेरा स्मरण करता है उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले मेरे भक्त के लिए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ या मैं सैव में उसको प्राप्त हो जाता हूँ अनायास प्राप्त हो जाता हूँ। दीदी को ठीक है ये आठवीं अध्याय के चौदह के शुरू में बताया किंतु यहाँ मुनि अध्याय का जहाँ प्रकरण आरंभ किया इतनी प्रशंसा कर करके इस न्यास से मुनि अध्याय के माँ भी ये बात क्या मिल सकती है, पूरे मुनि अध्याय के माँ भी ये बात है। अनन्यास चिंती हम तो मान ये जना परिपास थे शाम नित्यायुक्ता नाम योगक्षम वाहन। ये नौवें अध्याय का 22 का श्लोक है। इसका भाव यह है कि जो अनन भाव से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी उत्तम दर्जे की उपासना करते हैं यानी निष्काम भाव से थी मुझको उपासते हैं, उनका मैं योगक्षेम बहन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा का नाम योगक्षेम है, उसका मैं बहन करता हूँ यानी मैं उनका योगक्षेम ढोता हूँ। जैसे कुली बोझा भार ढोया, इस प्रकार से भगवान कहते हैं उसका बोझा मैं ढोता हूँ। यानी प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति वो है कि जो आज तक जिसकी प्राप्ति नहीं हुई है, यानी परमात्मा की प्राप्ति जिसको परम पद की प्राप्ति को उसके लिए भी भगवान अपने पर भार लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसका साधन हो तो क्या उसकी मैं रक्षा करता हूँ, कोई अपने अज्ञान के कारण सैकाम भाव से कि उसको एक प्रकार से नष्ट करना भी चाहे तो मैं नष्ट नहीं होने देता, और यदि उस कामना की पूर्ति करने में आसक्त समझता हूँ तो कामना की पूर्ति भी कर देता हूँ और उसे मेरी प्राप्ति में भी कोई समझो कि अड़चन नहीं आती। तो भगवान अपनी जिम्मेवारी देते हैं, गारंटी देते हैं कि जो अनंत भाव से नित्य निरंतर मैंने निष्काम भाव से जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ जो मेरी उपासना करे या मेरा ध्यान करता हुआ जो उसको उपासता है उसका मैं निश्चय उद्धार कर देता हूँ। तो मन मना हर का ये विस्तार है और मन भक्तो हो तू मेरा ही भक्त हो जा। तो ये बात भी भगवान ने जगह जगह कही है, देवान देव जोया देवान देव यजोयांती मद भक्ता यान की मान अपनी। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा भक्त मुझको प्राप्त होता है। तो ये भगवान ने सातवें अध्याय के 23 के श्लोक में कही है, ये ठीक है किंतु इस नौवें अध्याय के मां भी ये बात कही कही है क्या कि केवल भक्ति करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाए। जो नौवें अध्याय के मां भी है कि जैसे अभी चेसु दुराचारो भजते मान मन भाव साधु व्यवस्था मंत्रव्य समझ व्यवस्थित क्षिपण भवती धर्मात्मा सुगछति कौन से प्रतिजानी नैने भक्त प्रणश्यति। इन दो श्लोकों के बीच के वहां भगवान ये बात कहते हैं कि अतिशय दुराचारी पुरुष भी मुझको अनंत भाव से भजने वाला मेरा भक्त है तो उसको साधु समझना चाहिए क्योंकि वह समग्र माने अच्छी प्रकार से थी ये समझ रहा है कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली जो नित्य जो शांति है परम शांति उसको प्राप्त हो जाता है। और अर्जुन ये तो मेरी प्रतिज्ञा जान कि मेरे भक्त का कभी उसको पतन नहीं होता, इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान की भक्ति करने से उसका कल्याण हो जाता है। तो मन मना हर और मत भक्तो हर तू मेरे में मन को लगा और मेरा भक्त हो जा तो इस एक एक साधन से थी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीसरी बात यह आई कि मदिया जी तू मेरी पूजा कर तो केवल भगवान की पूजा से थी भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये बात इस नौवे अध्याय के 26 के श्लोक में आ गई है। 26 के श्लोक में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम योन भक्त्या परेच्छति तदम भक्ति प्रियता मस्मामी प्रियता मन पत्र पुष्प फल जल जो मेरा भक्त भक्ति कर करके मुझको देता है उस मेरे प्यारे भक्त का भक्ति करके दिया हुआ मैं अस्वामी मैंने प्रकट होकर के खाता हूँ, तो भगवान स्वयं उसके वास्ते आप कहते हैं कि मैं उसका दिया हुआ स्वीकार करता हूँ या मैं खाता हूँ। तो केवल भगवान की पूजा से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और मान नमस्कार कि तू मेरे को नमस्कार कर, मेरे को नमस्कार करने से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान को नमस्कार करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल नमस्कार को अर्थ के भगवान के चरणों में प्रणाम करने इतने मात्र के अर्थ से भी प्राप्ति तो हो जाती है, किंतु ये बात दूसरे शास्त्रों के आती है, याद भी आती है इसी अध्याय के वहां, किंतु साथ में कुछ और शब्दों को लेकर के सततम कीर्तनीयम तो मान यतन तस्य दृढ़ता मन संत मन भक्त्या नित्यता उपासते। जो महात्मा लोग जो भी संपदा वाले जो मेरी उपासना करते हैं वो किस प्रकार से उपासना करते हैं, उसमें ये गीता की इस 9वें अध्याय के 14 के शुरू में भगवान कहते हैं कि नित निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए उत्तम व्रत के धारण करने वाले मुझको नमस्कार करते हुए भक्ति से मेरी ऐसी उपासना करते हैं। सततम कीर्तन तो मान यतन तस्य दृढ़ता न संत से मान भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो उनकी प्रशंसा से ये बात आपने निकलती है। और भगवान के चरणों में नमस्कार करना यानी उसके अंतर्गत हम यह मान लेना कि अपने आप को भगवान को सौंप देना, उससे जो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये बात तो गीता के में जगह जगह से लिखी है। और केवल चरणों में नमस्कार करना यानी प्रणाम करना, इससे भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ये बात समझो कि अनुस्मृति के में लिखी है। एकोपि कृष्ण से कृतज्ञ प्रणाम दशवास मेरे अवश्य न तुल्य दशवास मेरी पुण्य थी जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भाए। भगवान श्री कृष्ण को जो एक बार नमस्कार करता है उसका फल 10 अश्वमेध यज्ञ के अभिश्रवण के समान है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला उसे के प्रभाव से स्वर्गादि लोकों को जाकर के उनका फल भोग करके पुनः संसार के में आता है, किंतु जो मुझ परमात्मा को नमस्कार करता हुआ यहाँ से घेरा होता है वो फिर लौट करके वापस नहीं आता। क्योंकि भगवान को जब नमस्कार करता हुआ जाता है, जो नमस्कार करता है जिसको नमस्कार करता है उसके स्वरूप की स्मृति रहती है, और स्वरूप की स्मृति रहने से थी उसका कल्याण हो जाता है। अंतकाल जो मान्य हुआ समय मुक्त कले हूँ यह प्रयासी अंतकाल से मान्य हुआ समय मुक्त कले हूँ यह प्रयाता अंत काले से मानव समुक्ता कलेवर यह प्रयाता से मधुआ उठे तो टाइम की खाती उतार हो गए पान भूल गया जी कैसे थी आग लिखा गया मेरे मुझे पास भी
पूर्णानं पूर्णानं अपारानं शांतानं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं बोधस्वरूपानं ज्ञानस्वरूपानं आनंदीयानं निर्गुण निराकार का स्वरूप के ध्यान की बात है। तो ध्यान के समय में एकांत और पवित्र देश की आवश्यकता है, तो यहाँ जो पवित्र स्थान है ही गंगा तट जो है तो पवित्र स्थान है और एकांत देश है। ध्यान करने के समय में मनुष्य को आसन लगा करके बैठना चाहिए, जैसे भगवान ने गीता में बताया है समन काय शिरोग्रहण गीता की 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में काया जो है और गला जो है और मस्तक ये एक सूत्र में सजा रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। पद्मासन या सिद्धासन या स्वस्तिकासन कोई भी आसन हो, महर्षि पतंजलि कहते हैं सुगम सुगम आसन आसन तो बैठने का जो है पलाशी मार करके कर वो स्थिरता से बैठना चाहिए, सुखपूर्व बैठना चाहिए। नेत्रों को बंद कर करके परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। निर्गुण निराकार परमात्मा का जो स्वरूप है उसको सत्यचित आनंद घन कहते हैं। परमात्मा सत्यचित आनंद घन है। सत का मतलब है कि परमात्मा है बाहर रूप, जिसके लिए भगवान ने गीता की 12वीं अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है, ये तो अक्षर निर्देश है वो व्यक्तम पर उपासते सर्वत्र चिंतन से अतूत समतम ध्रुव। इसका अर्थ और भाव यह है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है कि अक्षर स्वरूप है जिसका कभी क्षय नहीं हुए, विनाश नहीं हुए, जो सदा कायम रहे उसको अक्षर कहते हैं। और कैसा है कि अनिर्देशन माने जिसका निर्देश नहीं किया जा सके, बतलाया नहीं जा सके, संकेत से भी उसको बतलाया नहीं जा सके। कैसा है कि वो अव्यक्त है यानी निराकार है, उसके कोई आकार नहीं, जैसे आकाश के कोई आकार नहीं ऐसे परमात्मा कोई आकार नहीं। आकाश की माफल सर्वत्र गम और सर्वजा के बीच के हम वो व्यापक है, जैसे आकाश व्यापक है इसलिए परमात्मा सर्वजा में व्यापक है। अचिंतन आकाश से भी और सूक्ष्म है, आकाश का तो चिंतन हो सकता है, समझ में आ सकता है आकाश को, किंतु परमात्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता, बुद्धि के द्वारा वो समझ में आता है। बुद्धि ग्राजन दूसरी जगह बताया कि बुद्धि करके वो ग्राज्य ग्रहण करने में आता है। कठ उपनिषद ने भी बताया कि सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि भी सूक्ष्म दृष्टि पुरुषों के द्वारा वो परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप देखा जाता है। गीता में भी बताया सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम्, सूक्ष्म होने के कारण से थी वो सबके जानने में नहीं आता है, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म होती है उसके वो जानने में आता है, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसके जानने में आता है, जिसकी बुद्धि अचल स्थिर होती है उसके वो जानने में आता है। बुद्धि में तीन दोष है, मल विक्षेप आवरण, मल का नाश होता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, विक्षेप का नाश हो जाता है तो बुद्धि अचल और स्थिर हो जाती है, और आवरण का जब नाश हो जाता है तो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। और कैसा कूटक माने कूट की जो अचल, जैसे आकाश अचल है इससे भी बढ़कर के अचल है, महाप्रलय के वहां आकाश विचलित हो जाता है यानी इसका विनाश हो जाता है, काल करके इसका विनाश हो जाता है, और परमात्मा तो काल का भी काल है, उसका कभी विनाश होता नहीं, इसीलिए उसको ध्रुव कहे। परमात्मा में चलन क्रिया भी नहीं, हलन क्रिया भी नहीं, इस वास्ते उसको ऊटे से कहकर के अचल कहा। इस प्रकार से थी परमात्मा के विषय में ये मन के मन निश्चय करना कि परमात्मा है और वह सदा है, नित्य है, शाश्वत है। अब ये बात आई कि है, ये बात तो समझ में आई। शुभ स्वरूप है। तो चेतन के विषय में विचार करना तो इसके लिए गीता की सोलहवीं अध्याय का जो सत्रह का श्लोक है उसमें चेतन स्वरूप का वर्णन किया कि ज्योति सहमति तज्योति तमस परम विच्यते ज्ञानम ज्ञान 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 हृदय सर्वसमिश्रितम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, जितनी जड़ ज्योतियां हैं उस सब का वो प्रकाशक है। इस वास्ते वो ज्योतियों का भी ज्योति है।